एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी के संक में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं हमें आईना दिखाती है।
आईना किस तरह का?
ये दिखाती है कि हम आज एक समाज के तौर पे कैसे जी रहे हैं, मतलब कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हमारी बातचीत कैसी है, और हाँ, हमारी राजनीति भी किधर जा रही है।
अच्छा, दिलचस्प लग रहा है। कौन सी किताब है ये?
ये है रिचर्ड सेनेट की बहुत ही प्रभावशाली किताब द फॉल ऑफ पब्लिक मैन।
द फॉल ऑफ पब्लिक मैन, सार्वजनिक जीवन का पतन, सुनने में गंभीर लगता है। और ये आज क्यों जरूरी है, आप कह रही थी?
देखिए, ये किताब लिखी तो गई थी 1977 में, मतलब काफी पहले।
हाँ, लगभग 50 साल हो गए।
बिल्कुल, पर आज भी ये इतनी सटीक लगती है। कभी महसूस किया है कि आजकल पता नहीं अजनबियों से बात शुरू करना कितना मुश्किल सा हो गया है?
हाँ, होता तो है। या फिर राजनीति को ही देख लीजिए, मुद्दों से ज्यादा तो नेताओं की पर्सनल लाइफ, उनके व्यक्तित्वों पर ही चर्चा होती रहती है।
सही कहा। और सोशल मीडिया, वहां तो जैसे हर कोई अपनी असली जिंदगी, अपनी असली भावनाएं दिखाने की एक होड़ में लगाए। तो सेनेट की ये किताब इसी सब के पीछे की कहानी, उसकी जड़ें टटोलने की कोशिश करती है कि कैसे हमारा सार्वजनिक जीवन, मतलब वो दायरा जहां हम अजनबियों के साथ नागरिक की तरह मिलते हैं, वो कैसे सिकुड़ता गया
और उसकी जगह निजी भावनाओं और वो असली दिखने की चाहने ले ली।
हाँ बिल्कुल, और ये समझना आज के माहौल में बहुत जरूरी है, मुझे लगता है।
तो ठीक है, शुरुआत करते हैं लेखक से। ये रिचर्ड सेनेट हैं कौन, क्या खास है इनमें?
वो एक शहरी विचारक हैं, इतिहासकार हैं, और एक बहुत ही दिलचस्प बात, वे एक ट्रेंड संगीतकार भी हैं।
संगीतकार, वाह, ये तो अनोखा कॉम्बिनेशन
है ना। उन्होंने मशहूर जूलियट स्कूल से पढ़ाई की है, और ये संगीत की समझ आप देखेंगे उनकी सोच में झलकती है। वे समाज को एक तरह के मंच की तरह देखते हैं।
अच्छा, जैसे कोई नाटक चल रहा हो।
कुछ वैसा ही, जहां हम सब अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन्होंने हार्वर्ड, NYU, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी बड़ी जगहों पर पढ़ाया है, तो अकादमिक दुनिया में उनका बड़ा नाम है।
और उनका अप्रोच भी काफी फैला हुआ लगता है, समाजशास्त्र, इतिहास, शहर।
हाँ, यही उनकी खासियत है, इंटरडिसिप्लिनरी। वो समाजशास्त्र, इतिहास, अर्बन प्लानिंग, कल्चरल क्रिटिसिज्म, सबको मिलाकर देखते हैं। शहरों के बनने बिगड़ने, हमारी साइकोलॉजी पर उसका असर, निजी और सार्वजनिक जीवन का टकराव, ये सब उनके पसंदीदा विषय हैं।
तो ये किताब द फॉल ऑफ पब्लिक मैन इसी कड़ी में आती है?
जी हाँ, ये उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है, और ये उनके इसी अनोखे नजरिए को दिखाती है।
तो चलिए अब किताब पर आते हैं। द फॉल ऑफ पब्लिक मैन, इसका सार क्या है, क्या कहना चाहते हैं सेनेट?
मूल तर्क थोड़ा चौंकाने वाला है। जैसा आपने कहा, सेनेट कहते हैं कि हम, यानी आधुनिक पश्चिमी समाज, एक बड़े संकट से गुजर रहा है।
और वो संकट है
सार्वजनिक जीवन का खत्म होना, और उसकी जगह लेना, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, अंतरंगता का अत्याचार, टायरनी ऑफ इंटिमेसी।
अंतरंगता का अत्याचार, ये तो सुनने में ही अजीब है। मतलब करीबी रिश्ते तो अच्छी बात होती है ना?
हाँ, अच्छी बात होती है, लेकिन सेनेट कहते हैं कि जब यही एकमात्र या सबसे जरूरी चीज बन जाती है, जब हर रिश्ते में, हर बातचीत में गहरी भावनात्मक करीबी, अपनी निजी बातें बताने और असली होने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
तो वो अत्याचार बन जाता है।
हाँ, क्योंकि ये हमें उन रिश्तों से दूर कर देता है जो उतने निजी नहीं होते, पर समाज और लोकतंत्र के लिए जरूरी होते हैं, जैसे अजनबियों के साथ नागरिक की तरह व्यवहार करना। सेनेट मानते हैं कि ये बदलाव कोई प्रगति नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नुकसान है।
तो वो क्या कह रहे हैं, कि पहले ऐसा नहीं था?
बिल्कुल, वो हमें इतिहास में पीछे ले जाते हैं, करीब 18वीं सदी के लंदन और पेरिस। वो बताते हैं कि तब शहर के सार्वजनिक स्थान, जैसे कॉफी हाउस, पार्क, सड़कें, वो एक तरह के मंच या थिएटर जैसे थे।
मंच मतलब लोग एक्टिंग करते थे
एक तरह से। हाँ, लोग वहां मिलते थे, गपशप करते थे, बहस करते थे, अजनबियों से भी सहजता से बात करते थे, लेकिन एक तयशुदा तरीके से। कुछ सामाजिक नियम थे, रिवाज थे, भूमिकाएं थीं। सेनेट इसे कहते हैं इंसान एक अभिनेता के रूप में, मैन एज एक्टर।
अच्छा,
मतलब लोग ये समझते थे कि पब्लिक में व्यवहार करते हुए थोड़ी बनावट, थोड़ा प्रदर्शन जरूरी है। आप हर जगह अपने दिल की हर बात नहीं कहते फिरते थे।
उस जमाने में एक आदर्श था मैन ऑफ द वर्ल्ड का, ऐसा इंसान जो अपनी निजी जिंदगी की नुमाइश किए बिना अलग अलग सामाजिक माहौल में बड़ी कुशलता से, सलीके से पेश आ सके।
पहनावा कैसा है, बात करने का तरीका क्या है, ये सब बहुत मायने रखता था। क्यों? क्योंकि ये आपकी सार्वजनिक भूमिका तय करता था और ये भूमिकाएं आपको अजनबियों से जुड़ने का एक सेफ तरीका देती थीं।
ये तो आज के बी योरसेल्फ या जस्ट बी ऑथेंटिक वाले आइडिया से एकदम उल्टा है।
बिल्कुल, और सीनेट इसी आज के आइडिया में दो बड़े खतरा देखते हैं। पहला, नार्सिसिज्म।
नार्सिसिज्म मतलब आत्ममुग्धता।
हाँ, जब हम अपनी ही भावनाओं और अनुभवों में इतने खो जाते हैं कि हमें लगता है वही सबसे बड़ी सच्चाई है, दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है।
और दूसरा खतरा,
वही अंतरंगता का अत्याचार, यानी हर स्थिति में, चाहे वो दफ्तर हो या पड़ोस की दुकान, अपनी असली फीलिंग्स बताने और दूसरों से भी ऐसी ही उम्मीद रखने का सामाजिक दबाव।
तो ये बदलाव आया कैसे? कैसे वो 18वीं सदी का सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे खत्म हो गया?
सेनेट इसके लिए कई कारण गिनाते हैं। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी में बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए। औद्योगिक क्रांति हुई, पूंजीवाद का उदय हुआ,
शहरों का रूप बदला।
हाँ, शहर बड़े और भीड़भाड़ वाले हो गए। साथ ही सोच में भी बदलाव आया। परिवार और निजी रिश्तों पर जोर बहुत बढ़ गया। घर को माना जाने लगा सच्ची भावनाओं की जगह, एक सुरक्षित पनाहगाह, और बाहरी दुनिया उसे देखा जाने लगा बनावटी, झूठी, यहाँ तक कि खतरनाक जगह के तौर पर।
और यहीं पे वो प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी का आइडिया मजबूत हुआ होगा।
बिल्कुल, रूसो जैसे विचारकों ने कहना शुरू किया कि समाज हमें बिगाड़ता है, हमें अपनी असली आंतरिक प्रकृति के करीब रहना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि सार्वजनिक भूमिका निभाना, तय रिवाजों के हिसाब से चलना, अलग अलग मौकों पर अलग मुखौटे पहनना, ये सब धीरे धीरे झूठ, दिखावा, पाखंड माना जाने लगा।
हर कोई असली बनना चाहता था।
हाँ।
और जब असली बनने की धुन सवार हुई तो सारा ध्यान व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर चला गया। अब लोग दूसरों के व्यवहार को उनकी सामाजिक भूमिका के बजाय उनके निजी गुणों, उनके अंदरूनी चरित्र से आंकने लगे।
इसका राजनीति पे क्या असर पड़ा? आपने शुरू में इशारा किया था।
बहुत बड़ा असर। राजनीतिक बहसें जो पहले नीतियों, विचारों, कानूनों पर होती थीं, वो अब नेताओं के चरित्र, उनकी ईमानदारी, उनकी विश्वसनीयता, उनके व्यक्तित्व पर आके टिक गईं। सीनेट इसे कहते हैं राजनीति का निजीकरण या पर्सनलाइजेशन।
क्या इसका कोई उदाहरण है किताब में?
हाँ, एक बहुत मशहूर उदाहरण है फ्रांस का, ड्रेफस अफेयर। ड्रेफस अफेयर ये 19वीं सदी के आखिर का मामला है। एक फ्रेंच आर्मी ऑफिसर अल्फ्रेड ड्रेफस, जो यहूदी थे, उन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा।
अच्छा, मामला असल में सबूतों, न्याय और सेना के अंदरूनी पूर्वाग्रहों का था, लेकिन ये जल्द ही एक राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक ड्रामा बन गया। पूरा फ्रांस दो खेमों में बट गया। लोग सबूतों पर ध्यान देने के बजाय इस पर बहस कर रहे थे कि ड्रेफस का चरित्र कैसा है, उसके विरोधी कितने वफादार हैं।
मतलब लोग तथ्यों के बजाय ये देख रहे थे कि उन्हें कौन सा व्यक्ति ज्यादा सच्चा या भरोसेमंद लग रहा है।
बिल्कुल, ये पर्सनालिटी पॉलिटिक्स का एक क्लासिक उदाहरण बन गया, और सीनेट कहते हैं कि ये प्रवृत्ति तब से बढ़ती ही गई है।
ये तो आज भी बहुत दिखता है, नेताओं की निजी जिंदगी, उनके परिवार, उनकी पसंद नापसंद पर कितना फोकस रहता है।
हाँ, और ये सिर्फ राजनीति में नहीं हुआ। सीनेट बताते हैं कि शहरों का डिजाइन भी बदला, सड़कें चौड़ी हो गईं, लेकिन वो ट्रैफिक की आवाजाही के लिए थीं, लोगों के आराम से टहलने, मिलने जुलने, बतियाने के लिए नहीं।
शहर बस गुजरने की जगह बन गए, रुककर जीने की नहीं।
हाँ, सार्वजनिक चौक, पार्क, जहाँ लोग बिना किसी खास मकसद के भी मिल सकते थे, उनकी अहमियत कम होती गई। अजनबियों से सहज मुलाकातें मुश्किल होती गईं।
तो आज इस सब का नतीजा क्या है? सेनेट के अनुसार हम कहाँ खड़े हैं?
नतीजे गंभीर हैं। सेनेट मानते हैं कि ये जो अंतरंगता और प्रामाणिकता का जुनून है, ये एक तरह का सामाजिक दमन बन गया है।
दमन कैसे?
जब हर रिश्ते से, चाहे वो ऑफिस का सहकर्मी हो, पड़ोसी हो या कोई ऑनलाइन पहचान, हम निजी खुलासे और गहरी भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद करते हैं, तो हम उन जरूरी रिश्तों को बनाने से कतराने लगते हैं जिनमें थोड़ी दूरी, थोड़ी औपचारिकता होती है।
जैसे कि
एक नागरिक के तौर पर दूसरे नागरिकों से जुड़ना, अलग विचारों वाले लोगों के साथ बहस करना, किसी सामाजिक या राजनीतिक काम के लिए अजनबियों के साथ मिलकर काम करना, इन सब में थोड़ी इम्पर्सनालिटी या गैर निजी भाव जरूरी होता है।
और जब हम ये नहीं कर पाते
तो नतीजा होता है सामाजिक बिखराव। लोग अपने जैसे लोगों के छोटे छोटे दायरों में सिमट जाते हैं, अकेलापन बढ़ता है और राजनीतिक रूप से हम निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के लिए अजनबियों से मिलना, उनसे असहमत होना, उनके साथ मिलकर काम करना, ये सब सीखना पड़ता है।
और जब हर बातचीत में दिल की बात कहने या सुनने का दबाव हो तो अजनबियों से बात करना ही एक बोझ बन जाता है।
हाँ, डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न कह दें, कहीं सामने वाला हमें जज न कर ले। तो सबसे आसान रास्ता क्या है? चुप रहो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेडफोन लगा लो, सड़क पर चलते हुए नजरें चुरा लो।
और शिष्टाचार, सिविलिटी का क्या?
शिनेट के लिए शिष्टाचार सिर्फ प्लीज और थैंक यू कहना नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सामाजिक स्किल है। ये अजनबियों के साथ सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए व्यवहार करने की कला है, और वो कहते हैं कि ये कला हमने खो दी है,
क्योंकि अब हमारे पास अजनबियों से व्यवहार करने के कोई साझा गैर निजी नियम ही नहीं बचे, सब कुछ व्यक्तिगत हो गया है।
ठीक समझे। और राजनीति में इसका असर दिखता है करिश्मा के बढ़ते प्रभाव में।
करिश्माई नेता?
हाँ, हम ऐसे नेताओं की तरफ खिंचते हैं जो गर्म जोश लगें, भरोसेमंद दिखें, जो हमारे जैसे लगें, जिनकी बातें दिल को छू जाएं। उनकी नीतियां क्या हैं, उनकी योग्यता कितनी है, ये बातें पीछे रह जाती हैं।
नागरिक बस दर्शक बनकर रह जाते हैं, नेताओं के व्यक्तित्व का शो देखते हैं।
बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात सेनेट कहते हैं समुदाय के बारे में। आजकल लोग कम्युनिटी की बहुत तलाश करते हैं।
हाँ, अपनेपन की तलाश।
लेकिन सेनेट कहते हैं कि ये तलाश अक्सर नार्सिसिस्टिक होती है। हम ऐसे लोगों के समूह ढूंढते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हों, हमारी सोच, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी पहचान से मिलते जुलते,
ताकि हमें अपनी ही पसंदीदगी का एहसास हो, अपनी पहचान पुख्ता लगे।
हाँ, ये सच्चे सार्वजनिक जीवन के एकदम उलट है, क्योंकि सच्चा सार्वजनिक जीवन तो अलग अलग तरह के लोगों के साथ आने, असहमत होने और फिर भी साथ रहने पर टिका होता है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस किताब से निकलने वाली मुख्य बातें या संदेश क्या हैं?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है अंतरंगता का अत्याचार, टिरनी ऑफ इंटिमेसी। ये समझना कि जब निजी करीबी ही सबसे बड़ा मूल्य बन जाती है तो वो हमें बाकी दुनिया से, सार्वजनिक जिम्मेदारियों से काट सकती है।
दूसरी बात जो मुझे लगी वो है सार्वजनिक प्रदर्शन की खोई हुई कला, लॉस्ट आर्ट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। मतलब पब्लिक में ठीक से व्यवहार करने के लिए थोड़ी बनावट, थोड़ा अभिनय, भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण, ये सब स्किल्स हैं जो जरूरी हैं।
हाँ, और असली बनने के चक्कर में हमने इन स्किल्स को नजरअंदाज कर दिया है।
तीसरा, राजनीति का निजीकरण, पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब हम नेताओं को उनकी नीतियों से ज्यादा उनके व्यक्तित्व से आंकने लगते हैं तो लोकतंत्र की बहस का स्तर गिर जाता है।
बिल्कुल, ये आज के राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी एक बड़ा कारण है, मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती।
चौथा, शहरी सभ्यता और शिष्टाचार का पतन,
डिक्लाइन ऑफ अर्बन सिविलिटी।
शहरों का मतलब ही है अलग अलग तरह के लोगों का साथ रहना। इसके लिए आपसी सम्मान और कुछ साझा नियम चाहिए। सेनेट बताते हैं कि ये कैसे कमजोर हुआ है।
हाँ, और शायद इसीलिए आजकल शहरों में भी अकेलापन बढ़ रहा है, पड़ोसियों से भी उतनी बातचीत नहीं होती।
और पांचवा पॉइंट,
प्रामाणिकता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ ऑथेंटिसिटी। यानी असली होने की जो हमारी कोशिश है उसने हमें शायद ज्यादा अकेला और सामाजिक रूप से कम कुशल बना दिया है। उन भूमिकाओं और रिवाजों को नकार कर हमने खुद को आजाद नहीं किया, बल्कि दूसरों से जुड़ने का ढांचा ही खो दिया।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो याद रह जाती हैं, कुछ खास विचार?
हाँ, कई हैं, जैसे सेनेट का ये कहना कि आज ये माना जाता है कि लोगों के बीच करीबी होना अपने आप में एक नैतिक अच्छाई है, और हमारी कोशिश रहती है कि दूसरों के साथ करीबी और गर्मजोशी भरे रिश्तों के जरिए हम अपना व्यक्तित्व निखारें।
लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं।
हाँ, कि जब ये एकमात्र मूल्य बन जाता है तो ये सामाजिक जीवन को बहुत संकुचित कर देता है। एक और बहुत पावरफुल विचार है, एक सार्वजनिक जीवन संभव नहीं है अगर लोग महसूस करते हैं कि उन्हें हर समय प्रामाणिक होना चाहिए, कि उन्हें दूसरों के सामने वो प्रकट करना चाहिए जो वे वास्तव में महसूस करते हैं।
ये तो सीधे सीधा आज के कल्चर पे चोट है। मतलब प्रामाणिकता और सार्वजनिक जीवन, ये दोनों साथ नहीं चल सकते।
सुनेट के अनुसार नहीं, सार्वजनिक जीवन के लिए आपको अजनबियों के साथ साझा नियमों के हिसाब से व्यवहार करना सीखना होता है, जिसका मतलब है कभी कभी अपनी निजी भावनाओं को दबाना या बदलना पड़ता है।
और राजनीति पर उनका वो कटाक्ष भी बहुत तीखा है।
हाँ, कि व्यक्तित्व की संस्कृति ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि राजनीतिक समस्याएं वास्तव में इस बारे में सवार है कि नैतिक प्राणियों को किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए।
इससे राजनीतिक मुद्दे चरित्र और व्यक्तित्व के सवाल बन जाते हैं, नीतियों और संस्थाओं पर बहस नहीं हो पाती।
बिल्कुल। और अंत में एक और बात जो मुझे बहुत असरदार लगी, अंतरंगता राजनीतिक समस्या को उससे भागकर हल करने का प्रयास है।
वाह, मतलब हम अपनी निजी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समाज की बड़ी मुश्किल समस्याओं का सामना करने से बचते हैं, नागरिक होने की जिम्मेदारी से भागते हैं।
सही। तो अब सवाल उठता है कि इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, कहाँ देखते हैं हम इन्हें आज?
सबसे पहले तो सोशल मीडिया दिमाग में आता है। ये प्लेटफॉर्म्स तो जैसे अंतरंगता के अत्याचार के सबसे बड़े उदाहरण हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। हर कोई अपनी प्रामाणिक सेल्फ का प्रदर्शन कर रहा है, अपनी परफेक्ट छुट्टियां, अपने गहरे विचार, अपना गुस्सा, सब कुछ पब्लिक है। और राजनीतिक बहसें, वो तो अक्सर व्यक्तिगत पहचान, गुस्सा और दूसरों को नीचा दिखाने तक ही रह जाती हैं।
कार्यस्थल पर भी इसका असर है। आजकल बहुत सी कंपनियों में ये कल्चर है कि अपना पूरा स्व काम पर लाओ, टीम को परिवार समझो।
हाँ, वो वर्क फैमिली वाला कॉन्सेप्ट। सेनेट का काम हमें याद दिलाता है कि शायद थोड़ी पेशेवर दूरी बनाए रखना बुरा नहीं है। भूमिका आधारित बातचीत ज्यादा कुशल भी हो सकती है और शायद मानसिक रूप से कम थकाने वाली भी।
हर सहकर्मी से बेस्ट फ्रेंड बनने की उम्मीद रखना शायद ठीक नहीं।
सही। और राजनीतिक समझ भी बेहतर हो सकती है। नेताओं की पसंदगी या उनके निजी जीवन पर ध्यान देने के बजाय उनकी नीतियों, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर फोकस करने में मदद मिलती है।
करिश्मे के जाल में फंसने से बचने और मुद्दों पर आधारित बहस की मांग करने की जरूरत समझ आती है।
हाँ जी। और अपने शहरों और समुदायों के बारे में भी हम अलग तरह से सोच सकते हैं। क्या हमारे सार्वजनिक स्थान, पार्क, लाइब्रेरी, सड़कें सिर्फ गुजरने या खरीदने बेचने के लिए हैं, या वे ऐसी जगह हैं जहां अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग नागरिक की तरह मिल सकें, बात कर सकें, चाहे वे एक दूसरे को जानते न हो?
शायद हमें ऐसे न्यूट्रल जगहों की ज्यादा जरूरत है, उन्हें बचाना चाहिए।
और व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है ये किताब एक तरह की राहत भी दे सकती है। हमेशा ऑन रहने, हमेशा खुश दिखने, हमेशा अपनी निजी बातें शेयर करने का जो एक दबाव आजकल महसूस होता है।
हाँ, वो सोशल प्रेशर।
ये किताब उस दबाव को समझती है और कहती है कि ठीक है अगर आप अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, ठीक है अगर आपके कुछ रिश्ते सिर्फ भूमिका आधारित है, इसमें एक तरह की आजादी भी है।
तो इस पूरी चर्चा से आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि एक स्वस्थ समाज के लिए एक मजबूत और सम्मानित सार्वजनिक क्षेत्र बहुत जरूरी है, और ये क्षेत्र हमारी निजी अंतरंग दुनिया से अलग होना चाहिए। इन दोनों को गड़बड़ करने के खतरे हैं।
और मेरे लिए ये कि प्रामाणिकता पर हमारा जो आधुनिक जुनून है वो शायद हमें आजाद करने के बजाय हमारे सामाजिक जीवन को और हमारी राजनीतिक समझ को कमजोर कर रहा है। शिष्टाचार, जिसे हम बस अच्छी आदत समझते हैं, वो असल में एक जरूरी सामाजिक तकनीक है।
हाँ, शायद सच्ची प्रामाणिकता हर भावना को उघाड़ देने में नहीं, बल्कि एक नागरिक, एक पड़ोसी, एक अजनबी के रूप में अपनी सार्वजनिक भूमिकाओं को कुशलता और जिम्मेदारी से निभाने में है।
बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि अजनबियों से भरी इस दुनिया में एक साथ कैसे जिया जाए, जो लोकतंत्र की बुनियाद है।
तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी निजी दुनिया में हम छोटी छोटी चीजों में भी इस सार्वजनिक जीवन की कला का अभ्यास कैसे कर सकते हैं?
कैसे हम अजनबियों के साथ थोड़ी दूरी रखते हुए भी सम्मानजनक और सार्थक व्यवहार करें? कैसे बिना हर बातचीत को एक निजी इंटरव्यू बनाए हम एक दूसरे से जुड़ें?
इस पे सोचेगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।